बहरहाल आगे चलें, देखते हैं आगे भी बहुत कुछ है। पीछे से साथ जोड़ते हैं। वहुवल्लज़ी अंशा जन्नात मारूशात वगैर मारूशात, और वही साथ है जिसने बागात पैदा किए जो बुलंदियों पे चढ़ाए जाते हैं और जो बुलंदियों पे नहीं चढ़ाए जाते। वन नखल व ज़र मुख्तलिफ नुकुलुहु, और खजूर और खेतियाँ जुदा जुदा हैं जायके उनके। व जैतून व रुमान, और जैतून रुमान मुतशाबिह हम वगैरह मुतशाबिह। आप देखें तो यहाँ जोड़ों में रुमान और जैतून की बात हुई तो मुतशाबिहन और गैर मुतशाबिन हो गया। ये बात तो हमने कर ली, अब आगे देखिए असल चीज़ आगे है। कुलू मिन समरी ही इदा अस्मरा, खाओ इसके फलों में से जब फल आए, वक्त से पहले ना खाओ। ये मैसेज है। इदा अस्मरा की ज़रूरत थी क्या? इतनी बात काफ़ी नहीं थी? कुलू मिन समरी ही, इसके फलों में से खाओ। इदा अस्मरा में सब्र है। देखिए सब्र का फल मीठा, कुछ करने के बाद ही फल मिलता है। इशारा है कच्चे ना खाओ, वक्त लगे, और खाओ, मना नहीं किया अल्लाह ने, जितना चाहो खाओ। लेकिन वह आ तो हक्कहु यौम हसादी ही, इसका हक इसके काटने के दिन दो। अब ये तो है किसानों के लिए बात, और यौम हसादी ही के अंदर बड़ी फिकी बातें हैं। जैसे एक ज़कात होती है ना, एक साल जो माल आपके पास रहे उस पर 2.5% आप देते हैं। एक दूसरी इस्तेलाह होती है उशर, उशर कहते हैं ज़रई ज़मीनें, एक उशर होता है 10वां हिस्सा, एक 20वां हिस्सा होता है। अगर बारिश का पानी है तो ज़्यादा हिस्सा देना पड़ता है, पैसों का पानी है तो कम देना होता है। इसी तरह किसान जिनकी फसलें या जैसे फल हैं उनके लिए एक लाजिम चीज़ क्या होती है कि जब फल आता है तो उसका एक ख़ास हिस्सा अल्लाह के रास्ते में देना होता है, उसकी तरफ इशारा है। लेकिन ना तो इस वक्त हम फिक पढ़ रहे हैं और ना हम में से कोई किसान है या ना माली है, हम इसको अपने ऊपर लेके सोचते हैं। आज हमारा फल क्या है? असली फल तो हम नहीं बन पकाते, लेकिन मानवीय तौर पे देखें तो औलाद इंसान का फल होता है। यहाँ आप उसको समझ लीजिए, क्योंकि हर आयत में से अपने लिए अमल की बात तो लेनी है ना। आ तू हक का हो यौम हसाद ही, अब औलाद का यौम हसाद क्या है? उनकी ग्रेजुएशन डे। यहाँ एक हल्का सा इशारा है कि बला तुसरिफू, के जब तुम्हारे बच्चे कामयाब होते हैं, फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, उन्होंने कामयाबी हासिल की, तो उस पे भी वला तुसरिफू, इसराफ ना करो। कैसे इसराफ करता है इंसान? बस दफ़ा हम सेलिब्रेशन के नाम पर दूसरों का दिल जलाते हैं। एक वेस्टर्न माहौल में, इधर इतना नहीं मैंने देखा, शायद होता होगा, लेकिन अमेरिका में ग्रेजुएशंस का जो महीने होते हैं, लोग एक एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में सफ़र करके जाते हैं कि हमारे बच्चों की ग्रेजुएशन है, और हर वीकेंड पे ग्रेजुएशन पार्टीज हैं, दावतें हैं। देखिए अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी सेलिब्रेशन में उनको ना भूलें जिनके बच्चों के नंबर नहीं आए अच्छे। बस अगर आपके बच्चे के अच्छे नंबर आए, आप उसकी खूब अच्छी फंक्शन करते हैं, तो कई माओ बाप सोचेंगे ना कि अगर हमारे बच्चों के आते तो हम भी करते हैं। और कितने बच्चों को उस पे हो सकता है एहसास कमतरी हो जाए। तो असल जो बात है ना, आगे भी आएगी बात, कि इस्लाम चाहता है कि कोई भी खुशी का मौका है ना, ला तुसरिफ हो, फ़ख्र में ना हो, तकबर ना हो। करें क्या? सवाल पैदा होता है हमारा फल, हमारी औलाद कामयाब हो, क्या करें? नंबर एक, शुक्राने के 2 नफिल या जितने भी पढ़ सकें। फिर दूसरी बात, सदका दें। तीसरी बात, उनके मुस्तकबिल के लिए किसी अच्छी चीज़ की नियत करें कि अल्लाह मेरे बच्चे को तूने दुनिया की ये कामयाबी दी है, मैं इसको तेरा इस तरह मुकर्रब बनाऊंगी। फिर इसके बाद अगली चीज़ जिसमें हम अपनी औलादों को तैयार कर सकते हैं वो क्या है कि दुनिया का कुछ भी सीखें। मसलन अगर आपके बच्चों में कोई डॉक्टर बनता है, पायलट बनता है, कुछ भी, तो उसको सिखाएं कि तुम अपने इस हुनर और अपनी स्किल से दीन को क्या फ़ायदा दे सकते हो। और बीइंग अ मुस्लिम, तुम जिस फील्ड में जाओगे लोगों के सामने एक अच्छे रोल मॉडल बनना, यानी अच्छी तरबियत कीजिए, इसराफ से बचिए। फिर इसराफ से बचने में क्या, पैसे के ज़ियाँ से भी बचिए। कहते हैं अमेरिका में कि 2 ही मौक़ों पे इंसान खर्च कर सकता है, करता है, एक ग्रेजुएशन डे पे और एक शादी के दिन पे, और बहुत ज़्यादा इसको धूम धड़क्के से मनाते हैं, हज़ारों खर्च हो जाता है। तो खुश हों, لیکن دوسروں کو ناراض نہ کریں. بعض دفعہ ہم اپنی خوشی میں دوسروں کو جلاتے ہیں. کہ انہو لا یحب المصرفین, اللہ تعالیٰ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا, اس کو اچھے ہی نہیں لگتے وہ لوگ جو فضول چیزیں خرچ کرتے ہیں, ضائع کرتے ہیں. تو بچے کی شادی ہے یا منگنی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے, دیکھیں نظر بھی لگ جاتی ہے, انسان اپنی نظروں میں عجب کا شکار بھی ہو جاتا ہے, اللہ کو ایسا نہیں پسند. اب یہاں یہ جو بات آئی ہے نا کہ کاٹنے کے دن پہ کچھ حصہ دو, اس تھیم پہ قرآن پاک میں ایک پورا واقعہ آتا ہے. اگر سورت نون یا سورت قلم اگر آپ یاد رکھ لیں, 29 پارے کی دوسری سورت ہے, تو اس میں ایک قصہ آتا ہے کہ ایک باپ تھا, اس کے باغ تھے, بچے بھی تھے چھوٹے تھے. باپ بہت نیک تھا, جب بھی کبھی ادھر فصل آتی تو بہت سارے غریب جمع ہو جاتے, تو پھر وہ اس میں سے ان کو بھی کچھ دیتا. یہ ایک روٹین چل رہی تھی کئی سال سے. باپ کا انتقال ہوا تو بچے پاس بیٹھے, سب ملے, دیکھا, کہا کیا کریں. کہا کہ ہمارا باپ کتنا نا سمجھ تھا, اتنی محنت سے کماتا تھا اور جس دن فصل کٹتی تھی اس دن جا کے سارا دوسروں کو دے آتا تھا, کتنا حصہ دیتا. ہاں ہم تو ایسا نہیں کریں گے. کہا پھر کیا کریں. کہنے لگے کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ دن میں کریں گے تو لوگوں کو نظر آئیں گے اور غریب مسکین لوگ آئیں گے, ایسا کرتے ہیں کہ ہم رات کو جا کے فصل کاٹ لیں گے. ایک جو درمیانہ تھا اس نے تھوڑا سا ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو, ان کا غریبوں کا حصہ ہے, تم ان کو حصہ دو. لیکن بہرحال انہوں نے نہ سنی. اللہ کی طرف سے راتوں رات عذاب کا ایک ایسا گولا آیا, سارا باغ جل گیا. اور وہ اسے بالکل ارلی مارننگ, جیسے فجر سے بھی پہلے کے وقت میں گئے تاکہ غریبوں کے آنے سے پہلے کاٹ لے, اور جب گئے تو وہاں نہ باغ تھا اور نہ باغ کا بچہ. پھر وہ کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے, ہم تو کہیں اور چلے گئے. کہا نہیں یہ وہی ہے, لیکن ہماری قسمت پھوٹ گئی, ہم محروم رہ گئے, ہم یہ نہیں کرتے. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیکھے اہم سمجھ کے ایک سورت کا حصہ بنا دیا. تو اس میں ایک اپنے لیے بھی عمل کی بات رکھے, جب کوئی نعمت ملے اس میں سے اللہ کا حصہ نکال دے. آپ کے ہاتھ میں پاکٹ منی آتا ہوگا نا اگر آپ کے شوہر دیتے ہیں کچھ بھی, دیکھیے جتنا آپ دیں گے نا اللہ آپ کو اتنا دے گا. کچھ پرسنٹ کچھ بھی ہے اللہ کے لیے رکھ دیں. کچھ نہیں کر سکتے نا اگر سارا, تو اس میں سے کچھ ایک حصہ, مثال اگر آپ کو 1000 ملتا ہے تو اس میں سے 50 پاؤنڈ الگ کر دیں اور اس کو پھر پورا مہینہ دیتے رہیں, لیکن ایک خاص حصہ جو ہے وہ الگ کر لیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان سارے کا سارا اپنے آپ کو لے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے, ثابت بن قیس بن شماس ان کا نام تھا, انہوں نے اپنے کھجوروں کے باغ سے کھجوریں اتاری اور عہد کیا کہ آج جو لینے آئے گا میں اسے دوں گا, جو آتا ہے دوں گا. لوگوں نے جب یہ سنا کہ ہر آنے والے کو دیں گے, لوگ ٹوٹ پڑے. اور آپ کہتے ہیں شام کو کیا ہوا, ایک کھجور بھی ان کے پاس نہیں بچی. اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں کہ کس طرح کے لوگوں کے دل بنا دیتے ہیں. اور واقعی بہت سارے لوگ کماتے ہیں لیکن بہت سارے اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. اصل یہ کہ دوسروں پہ خرچ کریں, اپنی بھی ضروریات رکھیں. یہ بھی اسراف ہوگا کہ سارا دوسروں کو دے دیا جائے اور اپنے اوپر نہ خرچ کیا جائے. اب یہاں پہ فصلوں اور کھانوں پینوں کی باتوں کے بعد اگلی آیت میں جانوروں پہ غور و فکر ہے. آئیے دیکھتے ہیں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا, اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جو طویل قد کے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو چھوٹے قد کے ہیں. کرو کیا, کلو مما رزقکم اللہ, کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے. اور کیا نہ کرو, ولا تتبعوا, اور نہ تم پیروی کرو, نہ تم پیچھے چلو, خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی. کیوں, اس لیے کہ انہو لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت میں آپ دیکھیے چند نئے لفظ ہیں آپ کے لیے. پہلی بات فمن الانام, انام تو وہی ہے جو نیم سے نوم اونٹ کو کہتے ہیں لیکن چھپائے, یہی صورت آپ پڑھیں. حمولہ کا لفظ نام سے ہی آپ کو دکھ رہا ہوگا, حمل. حمل کہتے ہیں بوجھ کو, تو حمول کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو. طویل قد کے جانور جیسے اونٹ ہے, گھوڑا ہے, گدا ہے, خچر ہے, یعنی اتنے لمبے قد کے جانور کہ جن کے اوپر وزن رکھا جائے تو وہ چل سکے, ٹھیک ہے, یہ ہے حمول. فرشا کیا ہے, فرش زمین پہ لگے ہوئے جانور, چھوٹے قد کے جانور, بکری, شیپ, بلی یا اس طرح کے جانور. اب جو حمول ہیں ان سے تو تم بار برداری کا کام لیتے ہو, تو جو فرشا ہیں ان سے تم گوشت لیتے ہو اور دودھ پیتے ہو ان کا. کبھی جھگڑا کیا بکری اور اونٹ نے, तुम तो इतने छोटे कद की हो, मैं इतना लंबा हूं। कायनात का सबक देखिए कि अल्लाह ने जिसको लंबा कद दे दिया वो भी कोई नहीं अकड़ता, और जिसको जमीन से लगा दिया वो भी नहीं अकड़ता। फिर इनको फर्शा कहने की एक और वजह भी है। अमूमन इन जानवरों की जो खाल है ना, ये फर्श पे बिछाई जाती है, रग्स जो बनते हैं। अगर आपने अरबों को देखा तो उनके घरों में जो छोटे छोटे ऐसे टुकड़े होते हैं ना, वो प्योर खाल जो होती है ना, उसको ही उन्होंने टैन करके साफ करके तो अपने लिए इस्तेमाल किया होता है। बल्कि यहाँ भी मिलती है और बहुत महंगे होते हैं वो, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी सॉफ्ट होती है, वाइट से कलर की। अल्लाह सुब्हान तआला कहता है कि ये सब कुछ मैंने दिया और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया। आप अपने बच्चों के लिए क्या खिलौने लेके जाते होंगे, आप उनको क्या खिलाते होंगे पिलाते होंगे जो अल्लाह की जात ने हम सबके लिए पैदा किया। तुम खाओ पियो और देखो इन सारी चीजों को, देखो कि अल्लाह ने इनके अंदर जो कुछ पैदा किया है इससे सबक लो। यहाँ सवाल पैदा होता है कि वला तत्तबी खुतवात शैतान क्यों आया? शैतान के कदमों पर चलने से यहाँ मुराद वो तमाम फरसूदा रस्में जिनका पीछे जिक्र हो गया। तायबा जो मुशरिकीन नहीं खाते थे, यानी हलाल जानवरों का अपने ऊपर हराम ना करो। आप ये लिख लें, ला तत्तबी खुतवात शैतान का इन आयतों में मतलब क्या है कि हलाल जानवरों को हराम ना करो और हराम को हलाल ना करो। अल्लाह सुब्हान तआला ने तुम्हारे लिए इनको पैदा किए, तुम इनको खाओ। इन्नहु लकुम अदुव्वु मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सवाल पैदा होता है कि एक तो होता है कोई दुश्मन हो, लेकिन एक होता है खुला दुश्मन, फर्क क्या है? देखिए, एक वो दुश्मन है जिसकी दुश्मनी का आपको अंदाजा नहीं है, आपको इतना डर भी नहीं होगा उसका, जब वो आप पे हमला करेगा फिर आपको पता चलेगा। लेकिन एक वो है जो आपको फोन करता, कहता है घर से बाहर निकलो, तुम्हारी टांगे तोड़ता हूँ, निकलो बाहर जरा, तुम्हारे बच्चे को पकड़ता हूँ। किससे ज्यादा खौफ खाएंगे आप, जिसने आपको चैलेंज किया? शैतान ने कहाँ चैलेंज किया हमें, अभी अगली सूरत में जिक्र शुरू हो जाएगा। खुल्लम खुल्ला ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ, आऊंगा इनके पास आगे से पीछे से इधर से उधर से लेके आऊंगा। अब यहाँ एक छोटी सी चीज जो फी जमाना आज के दौर में मसला बन गई, वो क्या है कि आज की नस्लों के जहनों में ख्याल डाल दिया गया कि हम जानवरों का गोश्त नहीं खाएंगे। हाय बेचारी बकरी ज़बह कर दी, मर्सी किलिंग नाम सुना मैं? एक माँ ने कहा कि जब से बच्चे ने जानवर की कुर्बानी होते देखा उसके बाद से गोश्त खाना छोड़ दिया कि हाय तुमने मेरे बकरे को ज़िबा कर दिया, किसी ने खून देख लिया, किसी ने कुछ कर दिया, लिहाजा नहीं खाएंगे। आप बताइए, अगर जानवरों का गोश्त नहीं खाना तो अल्लाह ने इनको पैदा क्यों किया? ये भी आज के दौर का एक शोष है। और एनिमल राइट्स, इंसानों को गाजर मूली की तरह काट दो, लेकिन जानवर जिनको पैदा ही इस बात के लिए किया है कि इंसान खाए उससे अपना पेट भरे, वो ना मानो। तो इस सारी आयत के अंदर से अगर आप देखें ना, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें तीन बातें बताई हैं, अगर आप उसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहली बात है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने ये बता दिया कि ये सब कुछ जो बाग खेत और जानवर है ना, ये सब अल्लाह के दिए हुए हैं, किसी दूसरे की बख्शिश नहीं है। जब दिए हुए अल्लाह के हैं तो शुक्रिया उसका अदा करो। दूसरी बात तो इन दोनों आयतों में जो समझ आई वो क्या है कि जब ये चीज़ें अल्लाह की बख्शिश हैं तो इनका इस्तेमाल अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक करो, बाप दादा के तौर तरीकों को छोड़ दो। किसी दूसरे को हक नहीं पहुँचता कि अपनी मर्जी से उस पर कुछ हदूद मुकर्रर करे या कुछ रस्में बना दे और तीसरी कुछ इस तरह का काम करे। तीसरी बात ये पता चली कि ये सब चीज़ें अल्लाह ने इंसान के खाने पीने के लिए पैदा की हैं, तो खामखा इनको हराम ना करो वहम और क्यास की बुनियाद पर जो कि तुम्हारे बाप दादा के तौर तरीकों से चलते आ रहे थे। अब इसके बाद जैसे कल के सबक में हमने उनकी कुछ रसूमात देखी थी कि किस तरह से ये लोग इसको वो ना खाए उसको ये ना खाए, तो उसी में से कुछ बाकी मंदा चीज़ों का तस्करा अगली आयतों में, आयत 143 से अगली आयतों पर देखते जाएंगे। समानियत अजवाजन, ये आठ किस्म के चौपाए हैं, कौन से? इसके अंदर बात छुपी हुई है जो तुम्हारे आम तौर पर पाए जाते हैं। अरब कल्चर में अमूमन आठ किस्म के जोड़े कौन से थे, जरा आप ही बोलिए, लिखिए। ऊंट और ऊंटनी, आगे आ ही रही है, चले आयत पढ़ती हैं तो आप खुद ही आपके साथ ही आ जाएगी। वो आठ कौन से हैं? मिनस दाने स्नैन, भेड़ में से दो, शीप और शीपनी, ठीक है, चलिए, व मिनल माज स्नैन, और बकरा और बकरी, ठीक है, गोट एंड फीमेल गोट, मिसेस गोट, चार हो गए। अभी इतनी बात करके अल्लाह ताला पूछते हैं, अभी चार हुए, चार आगे आएंगे, लेकिन अल्लाह का एक क्वेश्चन है, कुल आज़करैनी हर्रमा अमिल उनसयैन, ए नबी जरा इनसे पूछिए, देखिए यहाँ कुल आ गया है, कल के सबक में क्या था, कालू, उन्होंने कहा, वो बातें करते हैं लोग कहते हैं, अल्लाह कहते हैं कालू नहीं कुल, आप इनसे पूछिए अल्लाह ने इन दोनों मुजक्करों को हराम किया या दोनों मुअन्नसों को, कौन से दो मुजक्कर, ये जान और माज, ठीक है, क्या बताओ भाई ये दोनों, इसके मुजक्कर हराम है या मुअन्नस हराम है, या फिर अमिल उनसा यईन, या इनकी दो उनसा, उनसा यईन क्या है, उनसा से तस्निया फीमेल, अमश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसा यईन, या जो कुछ इन दोनों मुअन्नसों के रहमों में है इसे हराम किया, ये क्या होगा, पेट का बच्चा। अब आप इनको मैं दोहराती हूँ, ये मुश्किल लफ्ज़ है, आपको मुश्किल लगेगी, पीछे हमने पढ़ा था कि वो कहते थे कि जो मादाओं के पेट में बच्चे हैं उसका गोश्त सिर्फ मर्द खा सकते हैं, औरतों पे हराम है, ठीक है, मुहर्रमुन अला अज़्वाजिना, ठीक है, या अज़्वाजुहुम, हाँ मरा हुआ पैदा हो जाए तो गोश्त मर्द नहीं तो औरतें भी खा सकती हैं, ये बात पढ़ी ना, ये उसका जवाब है, अल्लाह कहते हैं मैंने तो 8 किस्म के बनाए थे, 4 उसमें ये हैं, जान के 2 और मांस के 2, तुम ज़रा बताओ कि इनके मुजक्कर हराम है या इनकी मुअन्नस हराम है, या माओं के पेट में जो बच्चे हैं वो हराम है, नब्बे ऊनी भी इल्म, मुझे तो इल्म के साथ बताओ, गिव मी योर रेफरेंस, दलील दो, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, ये है इस्लाम का मिजाज, दलील का दीन है। कोई आपसे पूछता है आपका मसलक क्या है, आप कहिए कि हमारा मसलक दलील है। कोई पूछे आपसे आप किसकी पैरवी करते हैं, आप कहें कि हम दलील की पैरवी करते हैं, वो कहेगा वो क्या, दलील कहाँ से, तो कहें कुरान और सुन्नत से, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अपने ख़ानदानों और अपने दोस्तों रिश्तेदारों साथियों से क्रॉस क्वेश्चनिंग करना सिखा दिया कि लोग जब तुमसे कहें ये खाओ ये ना खाओ, इस तरह ना करो उस तरह ना करो, तो उनसे पूछो बताओ किधर लिखा है, कहाँ लिखा है। एक सिस्टर के बारे में मैं सुन रही थी, उन्होंने बताया कि हमारे ख़ानदान में रिवाज है कि जब लड़की शादी होकर ससुराल जाती है तो 3 महीने तक वो गोश्त ससुराल में नहीं खा सकती, जब कभी मैखी आएगी तो गोश्त खाएगी, नब्बे ओनी बिल में इन कुन तुम साथ की, खबर दो इल्म के साथ अगर तुम सच्चे हो, कहाँ लिखा हुआ है, सियासत्ता में लिखा है, तिरमिज़ी में लिखा है, मुस्नद अहमद में है, बुखारी में है, कहाँ लिखा है कि ये काम करो। और आप इमेजिन तो करें कि क्या फीलिंग आएगी, सारा घर बैठा गोश्त का पुलाव खा रहा है या बिरयानी खा रहा है या निहारी खा रहा है, तो सास कहती है बेटा तू तो नहीं खा सकती, वो दाल खा ले कल की, इधर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, ये फरसूदा बातें हैं। यकीन कीजिए आज भी हमारे माशरों में इस किस्म की बातें बहुत आम हैं, और ये कहाँ हैं, जहाँ बेइल्मी है, पहले दौर की सासें खुद भी नहीं थी पढ़ी लिखी तो इस तरह की बातें करती थी, आई है तो ये ना करना, गई है तो ये ना करना, अभी इसको ये ना दो, अभी वो ना दो। तो यहाँ आप फिर वही बात दोहरा ले जो हमने पिछले सबक में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से की थी कि जब तक दलील ना किसी चीज़ की कोई दे आप उस बात को ना माने, कोई भी काम कोई करे नब्बे ओनी बेल मेरे इन कुन तुम सादिकीन, दलील दो। अब 4 चीज़ों का तस्करा करके अगली 4 144 में आ रही हैं, वह मिनल इबिल इसनैन, और ऊँट के 2 हैं। इबिल किसको कहते हैं, ऊँट को, आप कहते हैं कि ऊँट के लिए बहुत सारे नाम हैं, इसकी एज के हिसाब से नाम बदल जाता है, इबिल बिल्कुल सिंपल नाम है, ऊँट को कहते हैं कैमल, 2 ऊँट के हैं यानी ऊँट और ऊँटनी। वह मिनल बकर इसनैन, और गाय के 2 यानी गाय और उसकी फीमेल। फिर पूछते हैं अल्लाह ताला कुल आज़करैन हर्रमा, क्या इसके 2 नरों को हराम किया, अमिल उनसयैन, या इसकी 2 मुअन्नसों को, या फिर अमश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैन, या फिर वो कि जिस पे मुश्तमिल हैं रहम 2 उनसाओं के। मुश्किल लफ्ज़ है ना, आप देखिए कि इश्तमलत रूट क्या होगा, शामिल, उर्दू में कहते हैं ना शामिल, शमूलियत, वही है ये। ता इसमें एक्स्ट्रा है, वो शिद्दत के लिए है, उस बाब बदल जाता है ना, बाब इख्तियार। तो इश्तमलत से मैंने इसको उर्दू तर्जमा इसलिए मुश्तमिल किया ताकि आपको लफ्ज के रूट में जाना आसान लगे। मुराद वही है कि इनके पेटों में क्या कुछ है, बताओ अगर तुम सच्चे हो कि इनके अंदर ये जो कुछ हो रहा है अल्लाह ने कहा है तो इसको हराम कर लेते हैं। फिर अल्लाह ताला सवाल पूछते हैं, अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम हाजिर थे? इस वसाकुमुल्लाहु बिहाजा, जब अल्लाह ने तुम्हें ये नसीहतें की थी, कौन सी नसीहतें? यही हर्रमा वाली, ये उसको मर्द ना खाए, इसको औरत ना खाए, पेट का मुर्दा बच्चा औरत खा ले, जिंदा ना खाए, है कोई बात ऐसी? नहीं है, तो फिर सुन लो, फमन असलम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, फिर कौन बड़ा जालिम है उससे जो अल्लाह पे झूठ घड़े, ताकि लियुदिल्लन्नास बिगैर इल्मिन, ताकि बगैर इल्म के लोगों को गुमराह करे। आगे शिद्दत, जितनी बातें ऐसी होती हैं ये कौन करते हैं? औरतें करती हैं, इल्म से बगैर बातें थी। अब एक चीज़ नोट करके देखें, जितनी फरसूदा रस्में, तो हम परस्तियाँ या इस किस्म की बातें, ये ना खाना, उधर ना जाना, ये कौन करता है अमूमन? औरतें करती हैं, हम औरतें करती हैं, मर्द ही करते हैं। अक्सर आप बहुओं से पूछो, कहती है मेरे ससुर वो तो बड़े खुले दिल के थे, सास मुझे बात बात पे टोकती थी, सास अम्मा ने ये बातें करनी है। और आप वही मिसाल ले लें कि जी गोश्त नहीं खाना, अब अगर वो ससुर साहब जो वो पकड़ के बोटी डाल दें बहू की प्लेट में, खाओ खाओ कुछ नहीं होता, तो अम्मा जी डांटेंगे उनको कि आपको नहीं पता ये बड़ों की बातें। आप बिलीव मी कि अगर औरतों को इल्म दे देंगे ना, तो आपके ख़ानदान जो है ना वो समझ जाएंगे। आज भी जब आप यहाँ से बातें सुन के जाते होंगे, तो आपको कई पिछली बातें या आज के भी कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं उनकी बातें याद ज़रूर आती होंगी, कि जो आज भी ऐसी बातें करते हैं। किसी के बारे में हमारे मशहूर है कि इतनी वहमी थी वो सास के घड़े का पानी, जैसे अभी ये देखिए अगर टेबल हिलता है ना तो ये पानी हिल रहा है मुसलसल ग्लास में, तो कहते हैं कि जब उन घड़ों में पहले पानी होता था तो घड़े का पानी अगर हिलता हुआ देखती थी ना, तो कहती थी बहू ने इसमें तवीज़ डाल लिया, ये इसलिए हिल रहा है। बगैर इल्म में लो ये दिल नासा बगैर इल्म, तो इसका इलाज क्या है? इल्म दे दें लोगों को, क्योंकि इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। आज आप देखिए कि ये इस किस्म की बातें हमने कर करा के इतना मुश्किल कर लिया ज़िंदगी को। अब ये तो आज ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें लग रही है ना, आप इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखते जाएं, तो आज हमने अपनी खुशियों के मौक़ों को भी मुश्किल कर लिया और दूसरों को भी। मैंने ऐसी कई बहनों को देखा है जो अपनी बहन की शादी पे सटपटाई फिर रही हैं, भाई क्या हो गया, हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? वो बहनोई को दूध पिलाने के लिए ग्लास और प्लेट खरीदी थी बड़ी सजी सजाई, वो मिल नहीं रही, वो दूध की बोतल नहीं मिली, दूध बादाम डाले थे वो किधर गया, गर्म हो गया, ठंडा हो गया, कभी आपने देखा ऐसे? आज हमने रस्मों के नाम पे अपनी खुशियों को ख़त्म किया। बस वह पता क्या होता है, हम ये सब कुछ करते हैं खुशियों के नाम पे, हालांकि खुशियों और रस्मों का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक वो सिंपल सी खूबसूरत सी शादी है जिसमें सच्चे जज्बात की तस्कीन है, माँ के लिए बहुत खुशी का मौका है कि उसका बेटा शादी शुदा हो रहा है, उसको उम्मीद है कि अब मेरी नस्ल बढ़ेगी, हमारे घर में एक बच्ची आएगी, माँ उसको इंजॉय करेगी ना। और अगर उस वक्त माँ को फिक्र ये पड़ी हुई है कि वो लेने वाली चीज़ें किधर हैं, देने वाली किधर है, वो फलां किधर गए और पार्लर का टाइम नहीं लिया और खाने वाले का बिल नहीं दिया, अक्सर आप देखिए लोग शादी के मौक़ों पर परेशान होते हैं, है कि नहीं? बाहर वाले जो हम जैसे गए होंगे वो इंजॉय कर रहे होंगे शादी को बैठ के, और घर वाले उड़ रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, और ऐसे लगता है जैसे पुलिस आ गई है, फौज आ गई है, बरात आ गई, बरात आ गई, ये नहीं फूल नहीं आए, वो नहीं आए, दिस एंड दैट। क्या वजह? हमने रस्मों के नाम पर शादी को स्ट्रेस और टेंशन में बदल लिया। इतने पाँव सूज जाते हैं घर वाली औरतों के, वो इधर से उधर वो पतली हील्स पहन के फिरती हैं, फिर बाद में कई कई दिन क्या महीनों बिस्तर से नहीं उठती कि अब सर में दर्द, कमर में दर्द हो गया, ये हो गया, पाँव मुड़ गया। आप अपने लिए जिए, देखिए जो बंदा अपने लिए जिएगा वो तो सॉफ्ट जूता पहनेगा ना, तो जो दूसरों में कद बड़ा करेगा वो इतनी लंबी हील पहनेगा और वो भी पेंसिल, है कि नहीं? आप खुद सोचे ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब हम अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं तो हमें खुद हैरत होती है। वो कहते हैं ना कि एक लड़की थी तो उसका कद छोटा था, तो उसने क्या किया, एक तो नीचे हील पहनी इतनी लंबी, और बाल जो थे दो चार उसको पकड़ के ना तो सर की इधर ऊपर एक पोनी बना ली। तो उसको देख के किसी ने कहा कि तुमने एड़ी चोटी का जोर लगाया अपना कद लंबा करने को। इसी से शायद मुहावरा बन गया, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं हम लोगों की नजरों में जचने के लिए और नहीं जच पाते। एक और बात, आप कड़वी लगती हैं आपको ये बातें, मुझे पता है, अंदर से कुड़ते हैं ऊपर से हंसते हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरा फर्ज है। मैंने अक्सर देखा है इन चीज़ों को कि लोग इन चीज़ों के नाम पे जितना किसी को खुश करना चाहते हैं ना उतनी बदमजगियाँ ज़रूर आती हैं कि नहीं आती। जितना दूसरे को प्रोटोकॉल देंगे ना, इज्जत दे रहे हैं, ये दुल्हन का कमरा है, ये इसका सोफा, ये सास का सोफा, ये नंद के, अब सास के सोफे पे नंद बैठ गई, नंद के सोफे पे कोई जिठानी बैठ गई, लड़ाई होगी, ऐसा होता है ना, ये इस दुल्हन का स्टेज है, ये उस दुल्हन का स्टेज है, सिर्फ स्टेज बदलने पे लड़ाइयाँ हो जाती है ना, है ना, ऐसी बातें हमारे कल्चर में, तो इतनी ज़रूरत क्या थी उछलने की। मैंने ऐसे भी सीधे साधे लोग देखे, उनको परवाह ही नहीं, बेटी की सास आई हुई या बेटे की आई है, वो उसके साथ भी हंसती हैं ऐसी सीधी सीधी, वो सास के साथ भी हंसती हैं, फिर वो लड़की की माँ को पता होता है ये सीधी सी, इन्होंने मुझे कोई लिफ्ट नहीं करानी, वो खुद ही प्लेट पकड़ के खाना लेके आ जाती हैं, इन पे रहे तो इन्होंने तो पूछना ही कोई नहीं, और कुछ जो होता है वो पूछ पूछ के खाना बाहर भी रखा हुआ है, फिर लाके टेबलों पे भी रखते हैं, खाइए ना पिए ना, और बाद में पूरा टेबल जो है वो ऐसे उठ के चला जाता है, जी ये किसी ने एक चखा, किसी ने एक चखा। ये बातें जाहिर हमें बहुत ज्यादा छोटी लगती हैं, लेकिन इसके ऊपर आज हम सबकी जिंदगियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा लग रहा है, इसलिए इन चीज़ों को आसान करें। जैसे हमारे पास एक बच्ची थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, अल्लाह ताला उसको खैर से रखे अपने घर में, तो उसकी शादी का मौका आया था, तो वही बात जो कहानी के सारी रिश्ता वगैरह भी इसी बुनियाद पे हुआ, तो उसने कहा कि मैंने अपनी शादी जो है ना मैंने स्कूल में करवानी है। आप बिलीव कर सकते हैं कि शादी को सोच के हमने निकाह A to Z सेमिनार मुकर्रर किया, अभी भी इसके ऑडियोज वेबसाइट पे मौजूद हैं, उस मौके पे जो प्रेजेंटेशंस बनी आपको मैं भी खोल के दिखाऊँ, एंड पे उस बच्ची का नाम भी है। उसकी शादी थी और वो कहती थी मेरा दिल करता है कि मेरी शादी पे कोई ऐसा सदका जारिया का काम हो के जो बाद में भी चले। खुद ही ऑर्गेनाइजर्स प्लानर्स होते थे बैठे मीटिंगें की, किस्सा मुख्तसर कहानी क्या बनी जो मुझे अब याद आया, अगर मैं भूल जाऊँ, अब वो भी लोग ये सुनते हैं बाद में, हो सकता है बात कहने में सुनने में कुछ गलत हो, लेकिन जो मुझे याद है कि ठीक है सेमिनार रख लेते हैं, खुली दावत, जुमे की शाम ओपन इनविटेशन था, सब आएंगे, उस दिन गालिबन उसका निकाह हुआ। और बिलीव कर सकते हैं कि जब हम लोगों को इनविटेशन दे रहे थे, फ्लायर पे भी लिखा होता कि निकाह A to Z फ्राइडे इज फ्री ओपन टू ऑल, और साथ ही लिखा होता देयर विल बी अ निकाह देयर टू। अब लोग वो सेमिनार के लिए तो क्या आते, वो दुल्हन देखने और निकाह के लिए हमारा पूरा स्कूल भरा हुआ था। वैसे देखे ना लड़कियों को शौक होता है ना कि हम पहनने ओढ़े हमें कोई देखे, अब अगर आप किसी महंगे से होटल में करते हैं तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, सच्ची बात है, 100 150 लोग या इससे कम पे भी आप करते हैं, लेकिन उस मौके पे हमारा पूरा स्कूल ऊपर नीचे हुआ हुआ था। और अब वो जिस तरह भी वो मशाला तैयार हुई और सजी, तो मुझे उसका वो वक्त याद आ रहा है कि कहती थी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी वाले दिन इतने लोग होंगे। हर एक का दिल करता है कि इस मौके पे लोग आए, मिलें, करें, पूरा शहर ही आने वाली कैफियत थी, और अगर वो खुद उसकी अम्मी अपने घर से उसको भेजती तो क्या उस वक्त वो इतने लोगों को बुला सकती थी। मिल के खाना हम लोगों ने पकाया, मुझे अब याद नहीं है, ये लंबी कहानी है इसकी जरूरत नहीं, लेकिन खुलासा ये कि बेहतरीन तरीके से उसकी शादी हो गई, और वो उसको जो प्रोग्राम था उसकी इंचार्ज भी थी, उसने कहा कि मैंने जिम्मेदारी नहीं छोड़नी, मुझे अच्छी तरह याद है जब वहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, आप तो अभी खुली जगहों में ना, तो जो हमारा स्कूल है नॉर्वे में उसमें जब कोई फंक्शन होता है ना तो हम एक किस्म के आधे से ज़्यादा फर्नीचर निकाल के बाहर लॉबी में रखते हैं, फिर लोग पूरे आते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग इस टाइप की और लोग ज़्यादा आते हैं, ये हर वक्त बेचारे टेबल इधर से उधर करते रहते हैं। और सब चले गए थे उससे एक दिन पहले, जो जुमे को फिर हम छुट्टी देते हैं ताकि क्लास शाम को या एक ही साथ में, जुमे रात की रात में मैं भी वहीं रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम उनके साथ, तो वहाँ मैं देखती रही कि वो रात को सबसे आखिर में गई है, हत्ता कि वो मोमबत्तियाँ तक रख के गई थी जो रिसेप्शन पे रखनी है, और अगले दिन सुबह आके जो कुछ नीचे साइन बोर्ड रखने थे रख के वो गई है, बिल्कुल प्रोग्राम हुआ प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम, और बीच में थोड़ा सा वक्त जाके बीच में वो खुद से तैयार हुई या उसको किसी ने किया, और तैयार कहाँ हुई, उस मौके पे हमने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, आज भी आप जाके खोल के वेबसाइट पे देखें, शादी का जोड़ा। उन्हीं दिनों में ये लिखित प्रोजेक्ट भी हुआ था, तो हमें शादी में कुछ स्टूडेंट जैसे आप लोग हैं उनमें से, उन्होंने अपनी शादियों के जोड़े भी उस मौके पे दिए थे कि इसको बेच लें। इतना कीमती जोड़ा था, आज भी मुझे उसकी याद आती है, इंतहाई खूबसूरत, डिसेंट, यानी गोल्डन ब्राउनिश और फिरोजी लाइट कलर, यानी इंतहाई खूबसूरत जोड़ा था कि मेरा लिए अगर हम लेने जाएं तो वो जिसने दिया उसने भी बताया कि उसने कितने का खरीदा था। तो वो स्कूल का था, उसने कहा कि मैं यही पहनूंगी, स्कूल को उसने कुछ पैसे दिए ऐसे ही, किराया कह लें या अपनी तरफ से सदका जारिया, उसने कहा मैंने यही सूट पहनना है, कमीज सब अपनी सेट की और उसी के साथ थोड़ी मैचिंग करके। उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, अगर आप किसी वक्त जाके सुने तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। उस वक्त मतलब उसने कहा था कि आज मैं सबके सामने बता सकती हूँ कि सर से पाँव तक जो कुछ मैंने पहना हुआ है ये सब मैंने स्कूल से लिया और ये यूज्ड है। शादी का जोड़ा एक दफ़ा पहन ले तो क्या यूज्ड है, 2-3 घंटे की बात है। परस भी उसने बताया कि ये आया हुआ था तो उधर से लिया हुआ, जूती भी, और मतलब उसने ये कहा कि मेरी इस शादी पे मेरा कुछ पैसा नहीं लगा। हत्ता कि जब शादी से एक दिन पहले जमेरात थी तो ज़ाहिर है कि ये बच्चियाँ फिर हमें ऐसी लगती हैं ना कि जैसे हमारी अपनी, और चाव तो होते, तो मुझे पता चला कि इसे मेहंदी लगवाने जाना है ना किसी और सिस्टर के पास, वो लगाती थी प्रोफेशनल, तो मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ ना, ऐसी शौक में कि ये अकेली क्यों जाए ना, तो मैं चलती हूँ। जब उधर गए तो मैं इसके साथ थी, तो बहरहाल जब उससे बात की कि क्या लेना देना, तो हम तो ये सोच के गए कि भाई हम देंगे, तो वो उसने कहा कि नहीं ये नूरुल कुरान से आई है तो मैं इसको आज फ्री मेहंदी लगाऊंगी। तो मैंने से कहा नहीं मैं आई हूँ साथ, तो मैं मेरा दिल कर रहा है कि मैं लगाऊँ। कहती उस दादा जो भी देंगे ना वो मैं स्कूल में डालूंगी। यकीन करें 700 करोन दिए उसको, उसने उसी वक्त वो स्कूल में डाल दिए। इतनी ब्लेस शादी के, और तैयार भी बेहतरीन जगह से, उसने भी कहा मैंने इसको फ्री तैयार करना है, कि वो उस दिन रो पड़ी थी स्टेज पे कि मेरी शादी पे कुछ भी खर्च नहीं आया, और खाना भी हमने जो अपने वैसे मेहमानों को जैसे खिलाते हैं वो खिलाया, उसमें खाने का खाना हो गया। और फिर सब के बीच में सब अभी हाजिर थे, फिर जब प्रोग्राम हुआ मगरिब का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी, फिर उसमें मर्दों में उनके घर के कुछ मर्द, और मर्दों का हमारा हिस्सा मामा छोटा सा, वहाँ थोड़े से मर्द थे 20-25, तो वहाँ माइक पे निकाह हुआ और उसके बाद रुखसी थी। तो सारा हॉल स्कूल यूं भरा हुआ है, तो सबको कह के भी रुकी अभी सदब की रुखसती है, और बीच में सबके लोगों के बीच में वो बच्ची चली गई। हमें ऐसे लगे हमारा स्कूल ही खाली हो गया, कौन इतने प्यार से किसी को भेजेगा। तो ये मत सोचिए कि आप दीन पे आएंगे तो आपके जज्बे नहीं पूरे होंगे। फिर वो चली गई, हो गई। अगले दिन सैटरडे जो था वो हमारे उस सेमिनार का पेड डे था, यानी फ्राइडे को रजिस्ट्रेशन हुए, पहले भी हो रहे थे, उस दिन होने थे, वो ओपन था, और इतने लोगों को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो हमने जो उसका सिलसिला था वो रखा। सैटरडे को 10 से शायद 11 से शुरू होकर 2-2.5 बजे का टाइम था। अब ये शादी होकर दुल्हन गई है ना, तो हम में से कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, ना हमने उसको कोई जिम्मेदारी देनी थी, लेकिन मुझे याद है कि 10 से 11 के बीच में वो आ गए। उस वक्त उसने प्रोग्राम की तरह अपना पूरा प्रोग्राम सुना लिया, और उसी दिन फिर 4-5 बजे बाद में उसका वलीमा था। सारा वक्त दिमाग पे हम सवार कर लेते हैं चीज़ों को। आप सारा दिन पार्लर में बैठे रहे, आपने फिर भी अच्छे तभी लगना है जब अल्लाह का हुक्म होना है, और वो इतनी अच्छी लगी। शाम को थोड़े से लोगों के साथ उसके इन लॉज ने वलीमा किया हुआ था, वहाँ हम सब गए, वो जो बारात में और जो वहाँ इतने जमघट्टे में हमें मजा आया वलीमे में, तो हमें ऐसे लग रहा था कि जिस तरफ हम पार्टी में आए ना, तो अपनी खुशियों को अगर अल्लाह के रंग में रंग लें तो ज़्यादा खूबसूरत होंगी। तो मैं यही सोच रही थी, अभी मैं पाकिस्तान गई तो मुझे दिखाया उन लोगों ने कि अमेरिका से अब आप लंदन वालों के लिए 2 शादी कितने खूबसूरत जोड़े आए हुए हैं। जब लोग सुनते हैं, वो है हमारा वेबसाइट पे, तो लोग कहते हैं कि अभी इधर के लिए कर लें। अब मुझे नहीं पता लंदन वाले भी पहन सकते हैं किसी का जोड़ा के नहीं पहन सकते। मैंने कहा मेरा दिल करता है एक जोड़ा हम रखें और जिसकी भी शादी इधर से हो वो बस वही पहने, और वो कितना पैसा बचता है, और दोबारा भी नहीं पहनते। मैंने उसको भी कहा, उसके भाई की शादी थी अभी कुछ माह पहले, मैंने कहा फिर दिल करता फिर पहन लो, ऐसे ही पहनना होता है ना, तुम फिर लेके पहन लो स्कूल से, फिर दे दो कुछ, तुम्हारा दिल है। हम खाम खा इन चीज़ों को संभालते रहते हैं, और हमारे दिल में इनकी सिर्फ मोहब्बत होती है और उसको पहन नहीं पाते। तो जिंदगी को आसान करें।